أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کلام جدید میں ہم نے بحث الحاد کے موضوع پر شروع کی تھی، اور جس عنوان کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے یا ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ افراد ملحد بنتے ہیں یا ملحد ہو کر ان اسباب کا سہارا لیتے ہیں. دونوں صورتیں جو ہیں وہ مد نظر ہیں، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ ان سبب کی وجہ سے ملحد ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہوتا شروع سے ملحد ہی ہے، یا ملحد کسی اور چیز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ملحد ہونے کے بعد جب دلائل کی تلاش میں نکلتا ہے تو ان اسباب کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے. تو مختلف اسباب آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور پچھلے درس میں ایک سبب کو واضح کیا تھا، تفصیل دی تھی اس کے اندر، کہ آج بھی ہم اسی پر ہی گفتگو کریں گے، چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل سبب ہے. اور جتنے بھی ملحدین کے نتائج ہیں اور اعتراضات ہیں خدا کے ماننے والوں پر، وہ اسی سبب کی وجہ سے ہیں. یعنی ایک بنیادی ترین سبب آپ یہ کہہ لیں یہی ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا تھا وہ سبب؟ کہ حس اور تجربے کو ملاک اور معیار بنانا. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حس اور تجربہ. جو چیز حس اور تجربے میں آ جائے وہ حقیقت ہے، اور جو حس اور تجربے میں نہ آئے وہ حقیقت نہیں ہے. اور اس نقطے کو اٹھا کر پھر انہوں نے فلسفے کے خلاف ایک تحریک شروع کی، اور فلسفے کے خلاف یہ بات کرنا شروع کی کہ فلسفہ چونکہ حسیات سے بحث نہیں کرتا، لہذا فلسفے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن جب ہم تحقیق کے میدان میں وارد ہوتے ہیں، ہمیں مطالب جو ہیں وہ کچھ ایسے انداز میں نظر آتے ہیں کہ یہ مبنا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے، یہ خود اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے تجربی روش کے اوپر اکتفا کیا ہے اور فلسفے کی نفی کی ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان میں سے ایک بندہ خود اسٹیفن ہاکنگ ہے. دا گریٹ ڈیزائن جو اس کی ایک اہم کتاب ہے، اس میں وہ باقاعدہ طور پر یہ بات ابتدا ہی میں کرتا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ مر چکا ہے. فلسفہ مر چکا سے مراد یہی ہے کہ فلسفہ کا اب کوئی میدان نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی تفسیر کر رہا ہے سائنس اس قابل ہے کہ پوری کائنات کی وہ تفسیر کر سکتی ہے، تو پھر فلسفے کی ضرورت نہیں بنتی ہے آ کر. اور یہ جو حسیات کو بنیاد بنا کر فلسفے کی نفی کی جا رہی ہے، جب ہم فلاسفہ سے جا کر پوچھتے ہیں، فلسفے کی کتابوں میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ بھی حسیات کو اہمیت دیتے ہیں. حتیٰ ارسطو کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ من فقد حسا فقد فقد علما، کہ جس کی حس نہ ہو، حس فاقد ہو جائے، وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. ये मकूला, ये स्टेटमेंट जो इसका अरस्तू की है, ये हिस्सियात की अहमियत पर दलालत कर रही है। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी फलसफी बन जाए या फलसफे का इद्दआ ये है कि अगर आपने फलसफे को मानना है, फलसफे की रविश पर चलना है, तो हिस्सियात को छोड़ना होगा। ना, ऐसा दावा और इद्दआ किसी फलसफी ने नहीं किया, बल्कि उलूमे हुसूली का आगाज हिस्सियात से होता है। बहुत सारे उलूम हैं कि जो हिस्सियात से हासिल होते हैं, और आप मंतिके अरस्तुई के अंदर ही जाकर देख लें, बदीहियात की जो मुख्तलिफ अकसाम बयान की गई हैं, मुख्तलिफ बदीही उलूम का जो जिक्र हुआ है, उनमें से एक जो है वो हिस्से इल्म है कि वो बदीही है। और बदीही इल्म किसे कहते हैं? उस इल्म को कहते हैं कि जो इंसान की मालूमात की दुनिया में सरमाए की हैसियत रखते हैं। जैसे आप अगर तिजारत करना चाहें तो तिजारत के मैदान में अगर आप उतरना चाहते हैं तो आपको सरमाए की जरूरत है। अगर सरमाया नहीं होगा तो आप तिजारत नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप इल्म की दुनिया में उतरना चाहते हैं तो आपको उस दुनिया के अंदर आने से पहले कुछ सरमाया चाहिए कि जो उलूम का आपके पास मौजूद, और जिसके जरिए से आप फिर मुख्तलिफ उलूम को कश्फ कर सकें। तो उन सरमाया उलूम को बदीहियात मंतिक अरस्तुई की जबान में कहा जाता है। कि आपने इल्म मंतिक में मेरा ख्याल में बाज दोस्तों ने पढ़ा होगा। जी, यानी बदी वाजे और रोशन होते हैं और कस्ब की जरूरत जो है वो नहीं होती उनके अंदर। कि आप अगर जो मंतिक मुजफ्फर किताब पढ़ाई जाती है उसके तीसरे हिस्से में जाकर देखें तो बदीहियात की जो है वो मुख्तलिफ अकसाम बयान की गई है। आपने देखा कि ये जो दावे कर रहे हैं वो कहीं से भी साबित नहीं हो रहे हैं। अब चूंकि इनके पास ज़राए इबलाग मौजूद हैं, इनका नफूज है मुआशरे के अंदर, तो इनकी बात को जो है वो हर्फ आखिर मानकर और इस किस्म की फलसफे के खिलाफ जो है वो बातें मशहूर कर दी जाती हैं। कल आपकी खिदमत में बयान किया था कि तजर्बी उलूम जो हैं इनकी जो बुनियाद है और असास है वो तजर्बे पर है। और तजर्बा खुद क्या है? तजर्बा मुख्तलिफ मुशाहदात का और मुख्तलिफ आजमाइशों का मजमुआ है। कि आप एक चीज के ऊपर एक चीज की मुशाहदा करते हैं, मुशाहदे से क्या मुराद है? आप मुस्तकीम तौर पर उस शय से क्या है बरखुर्द करते हैं, फारसी में कहते हैं, या आपके सामने वो चीज आती है। जैसा कि मेरे सामने अब ये किताब मौजूद है, अभी मैं मुशाहदा कर रहा हूं। दुरुस्त? तो ये मुशाहदा इस क्या होता है? मुस्तकीम होता है। और किसके जरिए होता है? हवास खमसा के जरिए। कि शय मुस्तकीम मौजूद हो और हवास खमसा के जरिए आप इर्तिबात बरकरार कर रहे हो उसके साथ, चाहे वो आंख के जरिए हो, चाहे वो हाथ के लम्स के जरिए हो, चाहे वो कान के जरिए हो, चाहे वो जायके के जरिए हो, जिसके जरिए भी हो। यानी एक चीज का या आसार जो हैं उसको मुस्तकीम, एक चीज के जो मुस्तकीम आसार हैं उससे इर्तिबात बरकरार करना हवास खमसा के जरिए, इसको कहते हैं मुशाहदा। और आजमाइश, यानी आजमाइश क्या? वो टेस्ट जो आप लेबोरेटरी के अंदर किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो जब मुशाहदा जो है वो हमने ये कहा कि तजुर्बा जो है इन मुशाहदात का जो है मजमूआ है, तो अब यहां से एक बात सामने आ जाती है। क्या? कि उलूम तजुर्बी तमाम कायनात और तमाम आलम का इहाता नहीं कर सकते। यहीं पर महदूदियत समझ में आ जाती है, क्योंकि उलूम तजुर्बी की बुनियाद और बेस क्या है? तजर्बा है। तजर्बा अगर देखा जाए तो क्या है? वो मुशाहदात और मुख्तलिफ आजमाइश ऑब्जर्वेशन का जो है मजमुआ है। और मुशाहदा कहते किसे हैं कि आप एक चीज के साथ या उसके आसार के साथ मुस्तकीम तौर पर इर्तिबात बरकरार करें हवा से खमसा के साथ। तो ये तारीफें फिट करना शुरू करें कि आप आया इस मेयार के मुताबिक पूरे आलम की तफसीर बयान कर सकते हैं, नहीं हो सकते। बस क्यों? इस वजह से कि इसके जरिए फकत आप मादियात को तो कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर एक हकीकत जो मादी ना हो उसके बारे में आप कभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, मादे से मावरा हो। और इसी वजह से आप देखें यही चीज सबब बन रही है, आप देखें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे चल रहे हैं कि मादे के अंदर इतना घिर गए ये जाकर और एतमाद सिर्फ कर लिया इसके ऊपर जाके, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इनकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिस के अंदर तो वो चीजें आ नहीं सकती हैं, तजुर्बे में तो वो चीजें आ नहीं सकती हैं, तो लिहाजा इनकार ही करते हैं उसका जाकर। खुद ये थे मसला। अगर आप उलूम को देखें जो हमारे पास साइंसी साइंस जिसे कहा जाता है उसको देखें तो दो किस्म में तकसीम किया जाता है उलूम को, या ये तबीई हैं या ये इंसानी हैं। दुरुस्त है, एक ह्यूमैनिटीज है और एक है नेचुरल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज ही कहेंगे इसको, उलूम तबीई। उलूमे तबीई के अंदर क्या होता है? ये वो इनका मौजू इंसान के अलावा होता है, जैसा कि मादा है, हैवानात हैं, जमीन है, पत्थर हैं, मसलन मुख्तलिफ उलूम जो ये उलूमे तबीई ये बहसें करते हैं। उलूमे इंसानी जो हैं उसके अंदर जो मौजू होता है वो खुद इंसान होता है, इंसान का नफ्स, इंसान का इदराक ये मौरद बहस करार पाता है। और इसमें अदबियात, हुकूक, ला मसलन इक्तिसाद, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तारीख, मंतिक, फलसफा, ये सारे क्या हैं? इन्हीं ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये जो उलूम मौजूद हैं आप देख रहे हैं कि इन उलूम के अंदर मामूलन मगरब जमीन के अंदर तहकीक की फकत एक ही रविश जो है उसके ऊपर अमल किया जा रहा है, वो है तजुर्बी। जैसा कि तबीयात की और फिजिक्स की मिसालें तो मिल रही हैं, मसलन आप देखें फिजिक्स केमिस्ट्री उसका तो मोरद ही वही है कि आपने तजुर्बा और आजमाइश करना है, ऑब्जर्वेशन उसके अंदर मौजूद होना जरूरी है आकर। लेकिन वो यहां इसको जो है वो वसी करते हैं जाकर, वसी करके ह्यूमैनिटीज के अंदर भी क्या है हर चीज को हिस महवर बना देते हैं आकर। और आप देखें इंसान के ऊपर जो उनकी राय सामने आती है वो मादी राय सामने आती है, इंसान को बदन के अंदर महसूर करके रख देते हैं। क्यों? इस वजह से कि रविश गलत अपनाई हुई है। मसलन अगर वो साइकोलॉजी के अंदर इंसान के नफ्स के बारे में कोई बात करेंगे तो मादी तौजीहात बयान करेंगे, क्यों? क्योंकि हिस के ऊपर एतमाद है फकत, किसी और रास्ते को मोतबर नहीं मानते हैं। अगर वो मसलन सोशियोलॉजी के अंदर जामए और मुआशरे के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मादी तफसीर करते हैं, क्यों? क्योंकि हिस के ऊपर फकत एतमाद पाया जाता है आकर। अब हम एक इसके ऊपर जो है एक नुक्ता आपकी खिदमत में बयान किया था कि अगर फकत हिस को महवर बना दिया जाए और हिस के अलावा किसी भी चीज के एतबार को खत्म कर दिया जाए, फलसफे को दरमियान में से खत्म कर दिया जाए जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, तो उसका लाजिमा यह निकलेगा कि आप खुद अपने उलूम के अंदर भी इल्म को तौलीद नहीं कर सकते, क्योंकि इल्म जो है मुख्तलिफ नजरियात का मजमुआ होता है और नजरियात जो है वो कुल्लियात पर डिपेंड करते हैं, यानी वो होते ही कुल्ली है, नजरिया कहते ही उसको है जो कुल्ली हो। आप कहते हैं कि हर वक्त के जब लोहे को गर्म किया जाए तो वो फैलना शुरू कर देता है, दुरुस्त है? तो अब ये आपने जो नजरिया दिया है ये कुल्ली तो है, जुजी तो नहीं है, मसलन ये लोहा वो लोहा वो लोहा, आप कहते हैं जो भी लोहा आप अगर उसको गर्म करेंगे तो हरारत का नतीजा ये निकलेगा कि वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप फलसफे को बीच में से निकाल देंगे, फकत हिस पर एतमाद करेंगे, तो फिर आप ये कायदा कुलिया भी नहीं बना सकते। अगर कायदा कुलिया ना बना पाए अपने इल्म के अंदर, तो फिर जो तजुर्बी उलूम के जिस पर इतने जो है फख्र करते हैं, और फख्र होना भी चाहिए कि उलूम के हम मुनाफी नहीं हैं, ये उलूम वाकई इंसान की खिदमत करते हैं, लेकिन हमारे जो बहस हो रही है वो ये कि इसी को सब कुछ समझकर जो है खुदा का इनकार किया जा रहा है, खुदा के बाकी अहकाम का इनकार किया जा रहा है, ये गलत है। और खुद आप जो एक जिस रविश के तहत जाकर एक गढ़ा खोद रहे हैं खुदा के कायल इन के लिए, आप खुद उसी गढ़े के अंदर गिरते नजर आ रहे हैं कि आपके हाथ से क्या है ये उलूम जो है वो निकल जाएंगे। हाँ, ये कल मैंने अर्ज किया था, आज थोड़ा इसको मैं मजीद तफसील देना चाह रहा हूं ताकि इबहाम अगर पिछले दर्स में रह गया था तो आज ये वाजे हो जाए। खूब, अब जो हिस और तजुर्बे पर फर्क फकत इक्तफा करते हैं और फलसफे को बीच में से निकालना चाहते हैं, तो अब किस तरीके से ये फिर नजरिए तक पहुंचेंगे, एक नजरिए को कैसे तौलीद करेंगे, एक नजरिए को कैसे पेश करेंगे आकर, इसके अंदर फिर जाकर क्या है इख्तलाफ पाया जाता है। मसलन क्या, मसलन कहते हैं कि अगर हिस को मेयार बना दिया जाए तो इंसान हिस करके तस्दीक कर सकता है कि ये जो मेरे सामने एक वाकया रूनुमा हुआ है ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। मसलन आपके सामने ये जो किया गया कि एक लोहे को गर्म किया गया और हरारत के अंदर, हरारत के असर में ये क्या है, कोई बंदा आपके सामने जो है वो बयान कर दे कि लोहे को अगर हरारत दी जाए तो हरारत का नतीजा ये निकलता है कि लोहा फैल जाता है, तो ये अफराद जो हिस गिरा हैं ये क्या कहते हैं कि इस कजिए को, इस नजरिए को तस्दीक करने या इसको रद्द करने का एक तरीका क्या है, हिस है, आप उसको तजुर्बा करें, अगर इसी तरीके से हो तो हम कहेंगे ठीक है, अगर ना हो तो हम कहेंगे क्या है, गलत है। जब ये बात हो तो इसी बात को हम रद्द करना चाह रहे हैं कि आपका ये मेयार दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फकत उन चीजों के बारे में फैसला कर सकते हैं कि जिनके ऊपर आपने तजुर्बा किया है, लेकिन नजरिए के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, आप उन अफराद का हुक्म बयान करना चाहते हैं कि जिन पर अभी आपने तजुर्बा नहीं किया, आजमाइश व ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर नहीं हुई है। मतलब तो कैसे करें इसको, तो यहां पर फिर मुख्तलिफ जो है वो नजरिए सामने आए, क्योंकि हिस के बारे में तो हमने कहा कि हिस के अंदर महदूदियत पाई जाती है, अब खाली हिस से जो है वो नतीजा नहीं ले सकते। तो यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो सामने आता है, एक मशहूर नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, वो आकर एक बात करता है कि जो फलसफियों के करीब है, लेकिन फर्क है कि फर्क बाद में बयान किया जाएगा, ये कहता है कि हर हादसा इल्लत रखता है और दो जो इल्लत हों वो क्या है, दो एक जैसी इल्लत अगर हों तो वो एक जैसा ही अमल करती हैं। मसलन अगर आपने हरारत दे दी और इस हरारत से लोहे के अंदर कौन सी सिफत आ गई, पिघलने की, आपने दूसरी आग ली और उस आग से हरारत दी लोहे को तो उसके नतीजे में भी लोहा क्या हो गया, फैलना शुरू हो गया, तो अब दो इल्लतें एक जैसी देखी तो नतीजा क्या एक जैसा आया कि आग की हरारत से लोहा पिघलना या फैलना जो है वो शुरू हो जाता है। तो फरमाते हैं कि स्टुअर्ट मिल जो है वो ये कहता है कि कि हम क्या करते हैं, इस इल्लत को कश्फ करने के पीछे होते हैं कि ये इल्लत क्या है। और इल्लियत का जो नज़रिया है, इल्लत की जो बहस है, कहाँ पे बहस होती है? फलसफे में। यानी आप हिस और तजर्बे, मुशाहदे और ऑब्जर्वेशन के जरिए आप फकत ये कश्फ करते हैं कि हरारत की इस मोरद में हरारत की वजह से लोहा पिघला है, लेकिन बाद वाला जो कजिया बनता है वो कजिया तो आप क्या हैं, अकल से लेते हैं। क्या कि अगर इल्लत यकसान, यानी एक ही इल्लत अगर एक जगह मौजूद हो या मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हो तो उसका मालूल भी वही मौजूद होगा। अगर ये लोहा हरारत अगर जहां भी मौजूद होगी, ये इनबिसात और फैलना उसका क्या होगा, मौजूद होगा। ये कौन हुक्म लगा रहा है? आंकल हुक्म लगा रहा है, मुशाहदा ये हुक्म नहीं करता। बस जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है वो ये जो है वो मतलब जो है वो बयान किया। लेकिन जो हिस गिरा थे वो तो इस बात को नहीं मान सकते थे, क्योंकि इसके जरिए तो फलसफा जो है वो साबित होता है। फलसफा मान ले तो बहुत सारी चीज़ें जो साबित हो जाती हैं। मसलन रसल जो है वो रियाजीदान जो कि मौजूद था, उसने आकर कहा कि तजुर्बी उलूम से अगर आप कुल्ली नतीजा लेना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमारे लिए बयान किया है, फकत उसी के जरिए कुल्ली नजरिया आप बना सकते हैं, नतीजा कुल्ली ले सकते हैं। लेकिन उस कजिए को साबित करने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम उसको साबित नहीं कर सकते हैं। बस नतीजा ये निकलता है कि हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जिससे हम एक कुल्ली नजरिया लें। तो कुल्ली नजरिया आप जो भी रास्ता इख्तियार करें, आप कतई और यकीनी रास्ता तो और यकीनी नतीजा तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि यकीनी नतीजा आपको तब मिलना था कि जब आप एक ऐसे कजिए का सहारा लें कि जो आपको बताए कि अगर इल्लत मौजूद हो तो हतमन मालूल भी वहां पर मौजूद होगा। अगर हरारत इल्लत है लोहे के फैलने की, तो जहां भी ये इल्लत मौजूद होगी लोहा फैलेगा, तो तब आपको कत और यकीन हासिल होगा। इसी वजह से रसल ने फिर ये नजरिया दिया कि हम तजर्बी उलूम से फकत रन हासिल कर सकते हैं, कत और यकीन हासिल नहीं हो सकता। अब ये नजरिए क्यों बयान कर रहा हूं आज इस दर्स के अंदर, ताकि उन अफराद के लिए ये दर्स हो कि जो तजर्बी रविश के ऊपर चलकर नजरियात देते हुए कतई बात कर रहे होते हैं और उसके जरिए बहुत सारी चीजों की नफी कर रहे होते हैं, दीन की नफी कर रहे होते हैं, खुदा की नफी कर रहे होते हैं, वो खुद अपनी हालत देखें कि इस तजर्बी रविश के अंदर क्या हो रहा है। रसेल खुद मुल्हिद था या कम से कम जो है वो शक्काक था, और तजर्बी उलूम के ऊपर उसका जो है वो इक्तफा था हिस्सों तजर्बे के ऊपर। वो आकर ये नतीजा दे रहा है कि तजर्बी इल्म जिसके अंदर मुशाहदा और आजमाइश व ऑब्जर्वेशन से इस्तेफादा किया जाता है, हम इससे फकत कुल्ली नताइज ले सकते हैं ज़न्नी, जिसमें गालिबन तो हम कह सकते हैं लेकिन कतअन व हतमन नहीं कह सकते। इससे ज्यादा जो है वो तजुर्बे की कोई अर्जिश, कीमत और वैल्यू नहीं है। ये था नजरिया किसका? रसेल का। इसके आगे चलते हैं, और जैसा कि आपको आमोजिश फलसफा के दर्स के अंदर भी बयान किया था कि एम्पेरिसिज्म के जो हिस गिरा हैं, मकतब हिस्सी जिसे हम कहते हैं, इसका सबसे बड़ा नुमाइंदा कौन था? डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने जब आकर कहा कि हम जो हैं इल्म का रास्ता फकत और फकत हिस है, और इसी रविश के तहत उसने असले इल्लियत का भी इनकार कर दिया। क्यों? इस वजह से कि इल्लियत आंखों से तो नजर नहीं आती, आंखों से जो चीज नजर आ रही होती है वो फकत ये नजर आ रही होती है कि जब भी आग के करीब लोहा आ जाए ये फैलना शुरू कर देता है। हरारत, आग जो कि हरारत रखती है, और लोहा, इन दो का करीब आना आंख देख सकती है और उसका फैलना, लेकिन इनके दरमियान क्या राबता पाया जाता है वो राबता आंख से नजर नहीं आता। इल्लतुल मालूल में हम क्या कहते हैं कि आग और लोहे के दरमियान एक राबता बरकरार है। उस राबते का नतीजा यह है कि जब भी आग इसके करीब लोहा आता है तो वो उसके हरारत के नतीजे में फैलना शुरू कर देता है। और असले इल्ली, इसी को इल्लियत कहते हैं। और इल्लियत चूंकि आंख से नजर नहीं आती, डेविड ह्यूम ने जो है वो इनकार कर दिया कि इल्लियत नाम की हकीकत मौजूद नहीं है, ये कायदा दुरुस्त नहीं है। हम फकत तकारुन समझते हैं दो चीजों के इकट्ठे होने को, दुरुस्त है? तो जब आपने इल्लियत का इनकार कर दिया, खूब आ गए डेविड ह्यूम, तो फिर आप इन तजर्बी उलूम का क्या करेंगे? कुल्ली नताइज आपके कहां गए? आप कैसे एक नतीजा लेंगे? इल्लियत का तो आपने इनकार कर दिया, कैसे आप इसको नतीजा लेंगे? तो डेविड ह्यूम ने कहा कि हम तजर्बे के जरिए किसी किस्म का कोई कुल्ली नतीजा नहीं ले सकते। डेविड ह्यूम के फलसफे का नतीजा यही निकलता है, और उसने उस नतीजे को, डेविड ह्यूम ने, रसल ने तो कहा था हम जन्नी कुल्ली नतीजा ले सकते हैं हम, लेकिन जन्नी होगा, वो गालिबन कह सकते हैं उसको। लेकिन डेविड ह्यूम ने जब आकर क्या किया, असले इल्लियत का इनकार कर दिया और कहा और दलील दी उसके ऊपर और सराहत से कहा कि असले इल्लियत को हम कबूल नहीं करते, और उसकी वजह यह है कि हिस इसको जो है वो दर्क नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसको जो है वो कबूल नहीं करते। तो फिर क्या है, अब सवाल ये होता है कि फिर तजर्बी उलूम में हम क्या करें, इसमें से नजरिया हम कैसे निकालें? कहता है कि रास्ता बंद है। डेविड ह्यूम के अगर इस नजरिए को माने तो फिर इल्म और खुर उस्तूरा जिसे कहते हैं, या ख्याल बाफी, जो एक ख्याल ख्याली पलोह जो है, ख्याल बाफी जो है वो अगर लें तो उनके दरमियान कोई फर्क नहीं रहे बाकी बचता, चाहे वो इल्म हो साइंस से लिया हुआ या एक ख्याल बाफियां हो इंसान ने खुद से जो बनाई हुई हैं वो हो, इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है फकत कि इनको परखने का, इसका इसको परखने का थोड़ा तरीका है हमारे पास जो साइंस से हासिल होता है, इस पर मुशाहदा हो सकता है, इस पर जो है वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन खुराफात के ऊपर ये नहीं हो सकती, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसमें। ये नतीजा निकलता है इस गिराई का। हो आगे चलते हैं, डेविड ह्यूम से आगे निकलते हैं। जब डेविड ह्यूम ने आकर उलूमे तजुर्बी की असास को खत्म कर दिया तो यहां पर फिर क्या हुआ, एक और नतीजा, एक और जो है वो मकतब सामने आता है जिसका बानी कौन है, कार्ल पुपर। कार्ल पुपर, कार्ल पुपर, खूब ये कहता है कि दुरुस्त है कि हम तजुर्बे के जरिए किसी चीज को साबित नहीं कर सकते, चूंकि डेविड ह्यूम ने जो एतराजात किए हैं इन एतराजात से हम नहीं बच सकते, कि हिस और तजुर्बा और मुशाहदा के साथ हम किसी भी चीज को साबित नहीं कर सकते, यानी पॉजिटिविज्म नहीं बन सकते, इस बात नहीं कर सकते, इस बात गिराई की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन हम एबताल कर सकते हैं। तजुर्बे के जरिए हम چونکہ ایک نظریے کو باطل کر سکتے ہیں، لہذا اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. مثلا اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ بطخ جو ہے فقط سفید ہے، تو ایک بندہ آ کر کیا کر سکتا ہے، مشاہدہ کر کے ایک مورد لا کر کھڑا کر سکتا ہے کالی بطخ بھی یہاں پہ موجود ہے. اب اس نے کیا کیا ہے، حس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کے نظریے کی نفی کی ہے کہ اس نے کہا کہ سفید بطخ ہے اس کائنات کے اندر، اس نے آ کر کہا کہ نہیں اس کائنات کے اندر کالی بطخ بھی موجود ہے. تو ہم تجربے کے ذریعے ایک نظریے کو پرکھ سکتے ہیں، اس کے اندر موجود خطا کو کشف کر سکتے ہیں، اتنا کافی ہے. اس کو کہتے ہیں ابطال گرائی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فالسیفائی ایبلٹی. فالسیفائی ایبلٹی کہ ابطال گرائی، جس کو جو ہے وہ ہم فارسی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اردو میں نہیں معلوم کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا. خب اب آ کر ڈیوڈ ہیوم کے نظریے کے مطابق خرافے کے درمیان اور علم کے درمیان فرق نہیں سامنے آ رہا تھا، چونکہ اس نے بالکل ہی تجربے کی اساس جو ہے وہ ختم کر دی تھی اپنے اس مبانی فلسفی کے ذریعے، جو اس نے ایک فلسفہ وہ والے کہتے ہیں، غربی کہتے ہیں، وائلہ اگر دیکھیں تو فلسفہ اس معنی میں نہیں بنتا. لیکن پوپر کے اس نظریے کے مطابق علم اور خرافے کے درمیان فرق آ جاتا ہے. کیا علم ابطال پذیر ہے؟ علم کو ہم باطل کر سکتے ہیں اگر وہ باطل ہونے والا ہو، اور خرافہ وہ ہے کہ جس کو باطل نہیں کر سکتے. خرافات بنا دی، اب کیا باطل کرنا ہے اس کو، کیا شاہد ڈھونڈنا ہے، کیا تجربہ کرنا ہے اس کو، اور کیا اس کے مقابلے میں شاہد مثال لے کر آنی ہے. ایک خرافہ ایک گھر بیٹھ کے کسی نے بنا لیا مثال کے طور پہ، اب اس کو کیا آپ رد کریں گے. لیکن علم کے میدان میں ہو سکتا ہے، نظریہ دیا آپ مقابل میں مشاہدہ اور آبزرویشن کریں جا کر، اس کے خلاف ایک مثال لے کر آ جائیں. ایک خلاف مثال لے کر آ جانا کافی ہوتا ہے اس بات کو کہ یہ نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے مغالطے کو، اس کی غلطی کو جو ہے وہ کشف کر دیں. خب کیا نتیجہ نکلے گا؟ پس آیا آپ اس نظریے کے مطابق قطعی اور یقینی نتیجہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. جب آپ قطعی کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ شاید ابھی کوئی شاید مثال لے کر آ جائے جو اس کے خلاف ہو. آپ نے نظریہ تو دے دیا، اب انتظار میں بیٹھے ہوں گے شاید ابھی کوئی نظریہ آ جائے، شاید ابھی کوئی نظریہ آ جائے، شاید ابھی کوئی شاہد مثال آ جائے خلاف ہمارے. تو جہاں پر بھی احتمال مخالف کا موجود ہو، وہاں قطع اور یقین نہیں ہوتا، وہ تخمینی اور ظنی ہی رہے گا. آپ فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس سے کام چلاؤ، ابھی تک کیونکہ شاہد مثال اس کے مخالف نہیں آئی ہے، اس کے مخالف مشاہدہ و تجربہ ابھی نہیں ہوا ہے، لہذا اس سے ابھی کام چلاؤ. لیکن آیا یہ حقیقت اسی طریقے سے ہے؟ آپ قطعی طور پر یہ بیان نہیں کر سکتے. بس آپ دیکھیں ہم جو ابھی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر فلسفہ بیچ سے نکال دیں، دیکھیں یہ مغرب زمین کے اندر ہی بیٹھے ہوئے بندے ہیں، ان کے نظریات کے مطابق کسی بھی جہت سے قطع اور یقین نہیں حاصل ہو رہا. درست ہے؟ تو اب آتے ہیں ہم اس کارل پوپر کے اس نظریے کو مد نظر رکھ کے ڈارونزم کے نظریے پر تطبیق کرتے ہیں، کہ جو آج مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن بنا ہوا ہے یا کتاب مقدس کی طرح ان کا ایک مقدس نظریہ بنا ہوا ہے، اور جو اس کے خلاف بولتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ سارے جو مکتب ہیں اس کے اوپر تطبیق کر کے دکھائیں، آیا قطعی نظریہ ہے؟ چاہے وہ ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ لیں، چاہے رسل کا نظریہ لیں، چاہے کارل پوپر کا نظریہ لیں، نہ ڈیوڈ ہیوم نے کہا ہے کہ تجربہ آپ کو علم دیتا ہے، نہ رسل کہہ رہا ہے کہ آپ تجربی علوم کے ذریعے یقین کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں، اور کارل پوپر کا نظریہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ زن سے اوپر نہیں جا رہا ہے. तो आप फिर किन किस जात से आकर कहते हैं कि डार्विनिज्म का नजरिया जो है, वो डार्विन का जो थ्योरी है वो कतई और यकीनी है, साबित हो चुकी है, 100% ऐसा है, उसके अलावा कोई और इहतमाल हो ही नहीं सकता उससे। और दूसरी बात ये कि अगर हम इस काल पोपर के जो है वो नजरिए को जो है वो मद्देनजर रख लें, क्या नजरिया काल पोपर का, कि अगर हम एक नजरिए को एबताल कर सकते हों तो वो कजिया इल्मी कहलाएगा, अगर वो एबताल के काबिल ना हो तो वो कजिया इल्म नहीं कहलाएगा बल्कि फर्जिया रहेगा या खुराफात रहेगा। अब सवाल यह है कि डार्विनिज्म के अंदर आप जाकर ये जो नजरिया दिया गया है इसको आप इब्ताल कर सकते हैं? इब्ताल होना है तजुर्बे से, और वो हालात के जिसको बयान किया जाता है उस पर तो तजुर्बा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसे अरबों साल करोड़ों साल गुजर चुके हैं। तो जब आप इस डार्विन के नजरिए को बातिल नहीं कर सकते तो पोपर के नजदीक फिर क्या है? ये खुराफात। ये हम नहीं कह रहे, मगरिब जमीन के मुफक्किरीन के नजरियों का नतीजा है। यानी आप रसेल के मुताबिक आए तब भी ये तखमीना है, डेविड ह्यूम के मुताबिक आए फिर भी इसके पीछे कुछ नहीं है, पोपर के मुताबिक आते हैं फिर तो ये खुराफात ही खुराफात है, चूंकि इसको इब्ताल नहीं किया जा सकता। बतवाजे, और भी बहुत कोशिशें की गई ये काम करने की, किसी तरीके से इस तजुर्बी फलसफे को हटाकर तजुर्बे से कुल्ली नतीजा लिया जाए, बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सब कोशिशें बेकार जा रही हैं। फकत लफ्जों में ये कहते हैं कि हम फलसफा बीच में नहीं लाएंगे, फकत साइंस, लेकिन अमल के अंदर वो फलसफी काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि नतीजा कुल्ली दे रहे होते हैं, और कुल्ली नतीजा बगैर फलसफे के हासिल नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि असल इल्लियत पर कायम है। नतीजा कुल्ली आप कब लेंगे? जैसा कि कल वाले दर्स में भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मतलब यही है कि आपने हरारत दी लोहे को, इस लोहे को आग लेकर आए, हरारत दी, पिघल गया या फैल गया, फिर आपने दोबारा किसी और माहौल में जाकर, किसी और जो है फजा में जाकर आग को तब्दील करके, लोहे को तब्दील करके दोबारा आपने क्या किया? हरारत दी, वो फिर पिघल गया। ये आपका मुशाहदा और ऑब्जर्वेशन इतना तकरार हुई है जाकर, तो आपने फिर एक जो है वो कायदा जो है वो ये बनाया कि आग फकत और फकत आग है, कि जो आग यानी हरारत से मुराद मेरी है, हरारत है इल्लत लोहे के पिघलने की, चूंकि मैंने मुख्तलिफ जगहों पर जाके तजुर्बा किया, दुरुस्त है, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर तजुर्बा करने का नतीजा यह निकला कि हरारत के अलावा कोई भी आमिल इसके पिघलने या इसके फैलने के अंदर दखील नहीं है, कोई दखालत नहीं रखती। क्योंकि अगर दखालत रखती होती तो फिर ये जो मुख्तलिफ जगह तब्दील की गई, मुख्तलिफ जमाने जब तब्दील किए गए, मुख्तलिफ जो है वो शराइत तब्दील की गई, फिर भी नतीजा एक ही निकल रहा है, ये इस तरीके से मौजूद ना होता। अब देखें फलसफा इस्तेमाल हो रहा है क्या, कि अगर हरारत इल्लत ना होती, तनहा तनहा इल्लत ना होती लोहे के फैलने की, तो ये हर जगह पर एक जैसा नतीजा ना देती। एक नतीजा देना तमाम मकानों के अंदर, तमाम जमानों के अंदर, तमाम शराइत के अंदर इस बात की अलामत है कि फकत हरारत इल्लत है, सबब है इसके फैलने का। तो ये फैसला किसने दिया है? अक्ल ने। और फलसफा अकल की बुनियाद पर है। यानी आप जब तक अकली रविश पर एतमाद नहीं करेंगे आप कुल्ली नतीजा नहीं दे सकते। अगर आप इस मबने को अच्छे तरीके से हल कर लें مزید کام کریں. یہ جو نکات آپ کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں اور توجہ کر رہا ہوں، یہ وہ نکات ہیں کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے آپ کام کر لیں تو بنیاد الہاد کی ان کے اوپر کھڑی ہے. نظریات کچھ میں نے ابھی کوئی نظریہ چھیڑا ہے؟ نہ ڈارون پہ بحث ہوئی ہے ابھی، نہ بگ بینگ کے اوپر اب بحث ہوئی ہے ابھی، نہ مثلا جو ہے وہ کیا نیورو سائنس کے اوپر جو ہے بات ہوئی، کسی کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، ابھی روش پہ بات ہو رہی ہے. اگر اس روش کو ختم کر رہے، بنیاد ہے یہ، اس کے تمام نتائج جو ہیں وہ دھڑم سے نیچے آ جائیں گے. تو یہ روش کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ تجربی، اگر فقط تنہا تجربے پر اعتماد کیا جائے تو آپ کسی بھی علم کو تولید نہیں کر سکتے. پھر فاتحہ پڑھ دیں علم کا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل میں جا کر دیکھو جگہ جگہ جو ہے وہ فلسفے کا استفادہ کر رہے ہیں. بس ہم نے دقت جب کی ہے تو یہ نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. بس ایک جو اہم ترین سبب ہے الحاد کا، وہ حس کے اوپر اعتماد، وہ بھی تنہا، کیونکہ حس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں، اس کی اہمیت کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کو تنہا حقیقت کا راستہ نہیں مانتے. ہمارا اور ملحدین کا اختلاف اس بات کے اندر ہے. یا سائنسدان جو فقط اور فقط جو حقیقت تک رسائی کو فقط حس مانتے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے؟ بس ایک یہ اہم ترین چیز تھی جو آپ کی خدمت بیان کر دی. اس کے اندر اور بہت ساری تفاصیل میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس درس کے اندر اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اگلے سبب کے اوپر، جو وہ بھی ایک اہم ترین سبب ہے، روشی ہی سبب ہے، کہ جس طرح یہ یہاں پر بات ہوئی ہے اور کئی نظریات جو ہیں وہ ان کے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم اگلی روش پہ بات کریں گے تو وہاں بھی مختلف نظریے ان کے نتائج جو ہیں وہ خود بخود ختم ہوتے نظر آئیں گے، ان پہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اللهم صل على